समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और आज हम बात करेंगे जनगणना 2027 के बारे में जो पहली अप्रैल से शुरू होगी। ये स्वतंत्रता के बाद की आठवीं और इस श्रृंखला की 16वीं जनगणना होगी। ये दो चरणों में आयोजित की जाएगी और इसे डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण जी। कार्यक्रम में मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
फरहत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप मृत्युंजय कुमार नारायण जी से जनगणना से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0112301481 0112371106 और 0112331444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं या #AskAIR के साथ एक्स पर सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मृत्युंजय जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जनगणना 2027 पहले की जनगणना से किस तरह अलग है?
फरहत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली जनगणना हम लोगों ने 2011 में की थी और उसके बाद 2027 में हो रही है। इसकी प्रक्रिया 2025 में जो है पहला प्रकाशन अधिसूचना का हम लोगों ने किया था 15 जून 2025, उसके बाद से जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है
जी।
तो यह जनगणना 2027 कई मायनों में जनगणना 2011 से अलग है। अगर ऐसे कुछ मायनों की बात करें तो तीन का हम नाम ले सकते हैं। पहला, जिस प्रकार से हम जनगणना में आंकड़े संग्रहित करते हैं, जनगणना 2011 में आंकड़े फिजिकल पेपर पे, कागज पे इकट्ठा किए गए थे और उसके बाद उसको स्कैन करके डिजिटाइज किया गया था। इस बार 2027 में डिजिटल माध्यम से हो रही है। इसमें प्रगणक घर घर अपने मोबाइल फोन या डिजिटल डिवाइस लेकर के जाएंगे और उसमें मोबाइल एप्लीकेशन पे सीधे आंकड़े दर्ज करेंगे
जी।
तो ये जनगणना के तौर तरीकों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो नंबर एक यह हो गया। दूसरा, 2011 की जनगणना तक, 2011 तक 15वीं जनगणना हो चुकी थी, अब 16वीं जनगणना होने जा रही है। तो 15वीं जनगणना तक देश के लोगों को स्वगणना का विकल्प नहीं था। वो अगर स्वगणना करना चाहते भी तो उनके पास यह विकल्प नहीं था। जब इनुमरेटर प्रगणक घर घर जाते थे तभी वो प्रश्नों का जवाब देते थे और जिसको दर्ज किया जाता था। इस बार स्वगणना का भी विकल्प है
जी।
अभी हमारे देश में कंप्यूटर लिटरेसी भी काफ़ी बढ़ चुकी है तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं
जी।
तो इससे लोग का सशक्तिकरण भी होगा, खुद ही अपनी जानकारी दर्ज कर देंगे और इससे इनुमरेटर जो प्रगणक होंगे उनका भार भी कम होगा
जी। मृत्युंजय जी, क्योंकि 2011 से लेकर 2026 बहुत बड़ा अंतराल है, इस बीच में बहुत सारी उपलब्धियां हमारे देश ने देखी हैं तो बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। और हमारे श्रोता रायबरेली से जुड़ गए हैं रमाशंकर वाजपेयी जी, आइए प्रश्न ले लेते हैं
जी। नमस्कार।
नमस्कार रमाशंकर जी,
मैं ये पूछना चाहता था कि जनगणना डिजिटल माध्यम से इसका परिवार में क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए, डिजिटल माध्यम से है इसलिए आप खुद भी जो है स्वगणना भी कर सकते हैं। आप इनुमरेटर के आने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मोबाइल फोन है या कंप्यूटर है, उसके माध्यम से खुद भी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या आंकड़े भरे हैं तो आंकड़े की शुद्धता अच्छी होगी। साथ ही डिजिटल माध्यम से होने से यह प्रभाव होगा कि जनगणना के आंकड़ों का प्रोसेसिंग
जी
तेजी से हो सकेगा और आंकड़े जो जनगणना की प्रक्रिया समाप्त होती है उसके बाद आंकड़े जारी किए जाते हैं, वो आंकड़े जो है आंकड़े तेजी से जारी किए जा सकते हैं, आंकड़े जो है समय से जारी किए जा सकते हैं। पहले उसको फिजिकल रिस्पॉन्सेज को डिजिटाइज करने में काफी वक्त लग जाता था, वो वक्त अब कम लगेगा।
जी मृत्युंजय जी, और हमारा जो आज का विषय चुनना था वो इसीलिए भी चुना हम लोगों ने क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न जो है वो आ रहे थे हमारे पास, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे पास प्रश्न आए। मॉरिश जी ने पूछा है कि जनगणना की शुरुआत किस राज्य से होगी, यानी इसमें कितने राज्य जो हैं वो कवर करेंगे?
देखिए, जनगणना हम दो चरणों में करते हैं। प्रथम चरण जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, जिसमें हाउस होल्ड परिवार की जानकारी ली जाती है, घर की जानकारी ली जाती है। और द्वितीय चरण जिसमें एक एक व्यक्ति की जानकारी ली जाती है, वह फरवरी 2027 में होगी। अभी जब प्रथम चरण है, प्रथम चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के मध्य हर राज्य को अधिकार है कि 30 दिन की अवधि चयन करें और उस अवधि में प्रगणक घर घर जाएंगे और जानकारी दर्ज करेंगे और उस 30 दिन की अवधि के पहले 15 दिन में स्वगणना का विकल्प लोगों को उपलब्ध होगा। तो जैसे हम बात करें तो अप्रैल के महीने में करीब 11 राज्य जो है प्रथम चरण की गणना कराने जा रहे हैं।
जी, और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी। जी राकेश जी।
जी जी, तो मेरा सबसे पहले तो आपको नमस्कार।
नमस्कार।
मेरा नमस्कार।
हाँ,
जी, मेरा एक प्रश्न ये रहता है कि जो हमारे भारतीय नागरिक जो है विदेश में रहते हैं तो अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन वो जो है जनगणना कैसे करवा सकते हैं, मेरा ये प्रश्न है।
राकेश जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। अभी प्रथम चरण की हम बात कर रहे हैं। प्रथम चरण बेसिकली मकानों की गणना और मकान सूचीकरण है। इसमें अगर बाहर रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे चरण में जब एक व्यक्ति की गणना कराते हैं तो उसमें जो बाहर रहने वाले हैं उनको एम्बेसी के माध्यम से उनकी गणना कराने की व्यवस्था है। तो द्वितीय चरण में यह प्रश्न वाजिब होगा।
जी, और अब व्हाट्सएप के माध्यम से एक और प्रश्न हमारे पास आया है सौरभ दुबे जी का कि जनगणना का डेटा कब रिलीज किया जाएगा?
जनगणना की कार्यवाही जो फील्ड की कार्यवाही है वो फरवरी और मार्च 27 में संपन्न होगी और उसके बाद आंकड़े मार्च 27 के बाद रिलीज होंगे। जो प्रोविजनल आंकड़े हैं मार्च के अंत तक हम लोग रिलीज कर देंगे और उसके बाद अलग अलग समय पे काफ़ी आंकड़े हम 2027 में ही रिलीज कर देंगे, क्योंकि इस बार डिजिटल जनगणना हो रही है इस बार, इसलिए जो है आंकड़ों को रिलीज करने में कम वक्त लगेगा।
जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि क्या जनगणना में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा और अगर किसी तरह की गलत जानकारी दी जाती है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं?
जनगणना अधिनियम 1948 है जिसके अंतर्गत जनगणना की कार्यवाही संपन्न होती है। उसमें एक धारा 8 है जिसमें यह कहा गया है कि जानकारी सर्वोत्तम जानकारी के हिसाब से सूचना देनी है और सूचना देने की बाध्यता है। जो जनगणना के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, देश की नीतियों के निर्धारण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसके आधार पर नीतियां निर्धारित होती हैं, कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, इसलिए आंकड़े महत्वपूर्ण हैं और ये आंकड़े बिल्कुल गोपनीय हैं। आरटीआई के अंतर्गत इसको शेयर नहीं किया जा सकता है और किसी दूसरे एजेंसी, किसी दूसरे विभाग, मंत्रालय को नहीं दिया जा सकता। सिर्फ एग्रीगेट आंकड़े प्रकाशित होते हैं तो इसकी आंकड़ों की पूरी गोपनीयता है। तो लोगों से उम्मीद की जाती है कि सही जानकारी दर्ज कराएंगे और अगर सूचना गलत दी जाती है तो उसके लिए अधिनियम में जो है दंड का ही प्रावधान है।
जी, और अब हमारे पास एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि जवालिया जी। जी रवि जी।
हाँ जी, नमस्कार जी।
नमस्कार,
मेरा नाम रवि जवालिया और सभी महानुभाव को भी नमस्कार और सबसे पहले आपको वित्तीय वर्ष 2026-27 की अग्रिम शुभकामनाएं जी सभी को।
जी, आपको भी शुभकामनाएं।
हाँ जी, थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि डिजिटल माध्यम से भी क्या जनगणना होगी और जनगणना का क्या प्रोसीजर रहता है, इसमें क्या क्या जानकारी मांगी जाती है, मतलब आम नागरिक से, मैं ये जानना चाहता हूँ महोदय से। थैंक यू।
रवि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो जनगणना करने का जो तरीका है उसमें प्रगणक होते हैं, पूरे देश में करीब 30 लाख के आसपास प्रगणक और उनके पर्यवेक्षक होंगे जो घर घर जाते हैं। घर घर जाकर के जो प्रश्न अधिसूचित केंद्र सरकार द्वारा प्रश्न की अधिसूचना निर्गत की गई है प्रथम चरण की, उन प्रश्नों पे जानकारी लेते हैं। डिजिटल माध्यम का मतलब है कि वो पेपर पे जानकारी आपसे नहीं लेंगे, अपने मोबाइल को लेकर के जाएंगे, उस पे एप्लीकेशन जो है इसके लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है, उस एप्लीकेशन पे आप द्वारा दी गई जानकारी को दर्ज करेंगे। तो ये डिजिटल माध्यम हो गया। डिजिटल माध्यम में सीधे सीधे जो है डेटा जो है डिजिटल फॉर्म में प्राप्त हो जाता है और उससे आंकड़ों को प्रोसेस करने में कम वक्त लगता है।
अच्छा मृत्युंजय जी, ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो पहला चरण होगा उसमें घर की जो जानकारी ली जाएगी, उसके अलावा भी और किस तरह के प्रश्न जो है वो जनता से पूछे जाएंगे?
पहले चरण के प्रश्नों को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया है और इसमें 34 प्रश्न हैं
जी।
उन्हीं प्रश्नों का जवाब उन्हें लेना होगा प्रगणक को। इन प्रश्नों के बाहर कोई प्रश्न नहीं कर सकते, उन प्रश्नों पर जानकारी लेनी होगी। उसमें इन प्रश्नों में जो अगर उनकी श्रेणियां अगर देखें तो उसमें कंडीशन ऑफ द हाउस, घर की क्या स्थिति है
जी,
और हाउस होल्ड के इन्फॉर्मेशन, परिवार के मुखिया कौन है, उनके मुखिया का नाम, उनका सेक्स और उनका किसी श्रेणी SC ST या अन्य को बिलोंग करते हैं, और उसके अलावा जो घर में जो परिसंपत्ति है
जी,
या जो सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो उन 34 प्रश्नों पे उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है
जी। अच्छा एक प्रश्न जो है मेरे पास और आया था कि लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं शायद इस जनगणना में उनकी भी जानकारी ली जाएगी, तो किसी तरह का अगर
देखिए अभी प्रथम श्रेणी में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना है, तो उसमें जो है मतलब परिवार की जानकारी, मतलब उसमें जो है मकानों की जानकारी, मकान के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। द्वितीय चरण में जो है एक एक व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी
जी।
और इसमें जो है कई न्यायालयों के निर्देश हैं और कई जगहों पे जो है इस संबंध में कानून भी बनाए गए हैं, उसके अंतर्गत जो भी व्यवस्था होगी उस प्रकार से जानकारी दर्ज की जाएगी।
एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत झाकड़े जी। जी श्रीकांत जी।
हेलो
जी श्रीकांत जी, प्रश्न पूछे।
नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम मेरी दृष्टि में है तो हमारे पास तो कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई कंप्यूटर भी नहीं है, तो हम किस प्रकार से जनगणना उसमें भी जुड़ सकते हैं, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है।
श्रीकांत जी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रगणक आपके घर में जाएंगे और आपसे सूचना लेंगे और अपने मोबाइल पे दर्ज करेंगे। आपकी भी गणना होगी, आपके परिवार की गणना होगी, आप चिंता ना करें।
जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने सेल्फ एनुमरेशन का ऑप्शन रखा है, स्वगणना जो है वो खुद से की जाएगी और घर घर जाकर आप अगर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण जी के साथ जनगणना 2027 डिजिटल उपकरणों और स्वगणना के साथ पहली जनगणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित कर रहा है और हमें है आपके फोन का इंतजार। तो आप कॉल कीजिए, हमारा नंबर है 0112331048। आप 0112331444 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं या आप #AskAIR के साथ एक्स पर सवाल पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा मृत्युंजय जी, एक और सवाल है कि जाति जनगणना के बारे में बहुत सारे जो सवाल हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने श्रोताओं को थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी दे दें।
फरहत जी, जैसा कि आपने बताया इस संबंध में कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स उनका निर्णय है जिसके आधार पे इस जनगणना में जाति की भी गणना की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि जनगणना दो चरणों में होती है, पहला चरण मकान सूचीकरण मकानों की गणना और दूसरा चरण है जिसे जनसंख्या की गणना कहते हैं। तो दूसरे चरण में व्यक्तिगत प्रश्न लिए जाते हैं, हमने अभी प्रथम चरण के प्रश्नों को अधिसूचित किया है
जी,
दूसरे चरण के प्रश्नों को अधिसूचित नहीं किया है, उन प्रश्नों को अंतिम करेंगे, उसके बाद अधिसूचना के माध्यम से लोग के बीच में ले जाएंगे। तो दूसरे चरण में जाति से संबंधित प्रश्न भी होंगे और जो प्रश्न अंतिम हो जाएंगे तब लोग के समक्ष अधिसूचना के माध्यम से लेकर के जाएंगे
जी। और एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं त्रिपुरा से, अविनाश जी। जी अविनाश जी।
जी नमस्कार।
नमस्कार
जी। मेरा सवाल यह है कि अभी तो पहले चरण में घरों की जो मकानों की गणना की जाएगी
जी
जी, तो इसमें मेरा ये सवाल यह है कि जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी जिसका लिस्ट पेंडिंग है जो अभी मिला नहीं है उनकी घरों के बाद में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी गणना हो जाएगी और बाद में उनका मकान बनेगा तो फिर हम कैसे उनको क्या कर सकते हैं।
अविनाश जी, अभी जो भी स्थिति होगी आवास की उसको उसी रूप में दर्ज किया जाएगा। और यह मैं बताना यह भी बताना चाहता हूँ कि इसमें जो व्यक्तिगत आंकड़े व्यक्तिगत जानकारी आप देते हैं उसका प्रयोग एग्रीगेट मतलब इकट्ठा संकलित करके सांख्यिकीय आंकड़ों को प्रकाशित करने में किया जाता है। व्यक्तिगत आंकड़ों का उपयोग RTI के अंतर्गत या जो है न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाता है और इसके आधार पर किसी योजना का लाभ नहीं दिया सकता क्योंकि ये आंकड़े परम गोपनीय हैं, इनको हम शेयर नहीं करते। तो आपको जो है किसी योजना के अंतर्गत लाभ लेना है तो उस योजना के पात्रता के हिसाब से उसको लाभ अलग से मिलेगा, जनगणना से उसका मतलब नहीं है
जी। अच्छा मृत्युंजय जी, इतनी बड़ी आबादी है तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है और महत्वपूर्ण भी है ये काम करना, तो किस तरह की तैयारियां हम लोगों के पास है?
हाँ देखिए, जनगणना प्रशासनिक दृष्टिकोण से
जी
एक बहुत बड़ा काम है। भारत की आबादी संभवतः दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए जनगणना का काम और भी बड़ा यहाँ हो जाता है, बहुत गुरुतर कार्य है। इसमें भारत सरकार और सारे राज्य सरकारें तथा केंद्र शासित प्रदेश सभी मिल करके काम करते हैं
जी।
जो फील्ड का काम है वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके स्तर पे होता है और करीब 31 लाख लोग इनुमरेटर जिन्हें प्रगणक और पर्यवेक्षक सुपरवाइजर घर घर जाते हैं, तो इतने सारे लोग इस कार्य में लगते हैं, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, उसके लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था होती है, तो काफ़ी तैयारी जो है इसकी की जाती है। तो करीब जनगणना जो है मतलब के लिए करीब 2 साल की तैयारी होती है तब जा करके जो है इसका कार्य संपन्न होता है
जी। और अब जैन से द्वारिकाधीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी द्वारिकाधीश जी।
हाँ मैडम नमस्कार, मैं द्वारिकाधीश चौधरी उज्जैन से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, ये जो जनगणना कर रहे हैं इसमें हिंदू जिसमें जैन भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, वैष्णव भी आते हैं, वैश्य आते हैं, इसके अलावा SC OBC और ST इनकी अलग अलग जनगणना कैसे करेंगे?
द्वारकाधीश जी आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि पहला चरण में हम मकानों की गणना और मकानों का सूचीकरण करते हैं। जब आपने धर्म की बात की है वह द्वितीय चरण में आएगा, उसके द्वितीय चरण में धर्म के प्रश्न होंगे, जाति के भी प्रश्न होंगे और द्वितीय चरण के प्रश्न जब अंतिम कर लिए जाएंगे तो अधिसूचना उसकी प्रकाशित होगी जिससे आपको जानकारी होगी। और धर्म में व्यक्ति जो भी बताता है उसको उसी प्रकार से दर्ज किया जाता है
जी। और हमने पहले चरण की बात करी है तो पहले चरण में जो है हम आपको एक बार फिर से बता दें कि भवन संख्या हो गई, जनगणना घर संख्या हो गई या फिर फर्श की प्रमुख सामग्री या दीवार की प्रमुख सामग्री और परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या हो या फिर परिवार में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या और शौचालय है कि नहीं, आप किस तरीके से आपका रहन सहन है, इस तरीके क्वेश्चन जो है वो पहले चरण में पूछे जाएंगे। और व्हाट्सएप के माध्यम से अरविंद जी ने हमसे प्रश्न किया है, सेल्फ एनुमरेशन यानी स्वगणना फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
हाँ, स्वगणना इसके लिए हमारा अलग से पोर्टल है, ac.census.gov.in। इस पोर्टल पे जाएंगे और इस पोर्टल पे मोबाइल के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल पे OTP आता है उसके माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। राज्य का जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य को सिलेक्ट करें और उसके बाद इसमें लैंग्वेज 16 लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी उसके अलावा 14 क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिसमें स्वगणना कर सकते हैं, तो प्रश्नों का जवाब देते जाएं और उसको ड्राफ्ट को सेव कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं
जी। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर 2011 में भी आपने क्षेत्रीय भाषा में जनगणना का जवाब दिया था तो इसमें भी वो सुविधा उपलब्ध है।
बिल्कुल बिल्कुल
जी। सौरभ दुबे जी ने पूछा है कि जनगणना में साक्षरता का क्या मानदंड है।
साक्षरता का प्रश्न भी द्वितीय चरण में आएगा, और साक्षरता जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनकी साक्षरता नहीं देखी जाती, वो तो अभी सीखने के फेज में होते हैं।
अच्छा, अगर उसके
हाँ और उसके ऊपर जो होते हैं जो कि लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ के साथ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं किसी भाषा में, तो उनको साक्षर माना जाता है
जी। और अब छतरपुर से हमारे पास एक और श्रोता जुड़ गए हैं, रशीद अहमद खान जी। रशीद जी
जी नमस्ते मैम।
नमस्कार।
मैं सर से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे जनगणना का प्रथम चरण शुरू हो रहा है तो इसमें क्या मकान मालिक या जो मकान में सदस्य लोग रहते हैं उनकी फोटो वगैरह भी ली जाएगी या घर मकान की भी फोटो ली जाएगी, कृपया इस बारे में बता देंगे।
हाँ रशीद जी, इसमें किसी प्रकार की कोई फोटो नहीं ली जाएगी, सिर्फ जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें जनगणना में किसी प्रकार का दस्तावेज, किसी प्रकार का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जानकारी आप जैसा सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर बताएंगे उसको यथावत प्रगणक दर्ज करेंगे
जी। अच्छा, इसमें जो है अगर किसी तरह की गलती हो जाए मतलब, तो इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, अगर पहली बार में इन्फॉर्मेशन हमने गलत भर दी तो उसको सुधार कैसे करेंगे।
हाँ, उसको एडिट कर सकते हैं, जिस प्रकार से मोबाइल पे ओटीपी आया उसी प्रकार से पुनः जा करके उसको संशोधित कर सकते हैं, उसको ड्राफ्ट सेव कर लें, उसको प्रीव्यू कर सकते हैं
जी,
और लगता है कहीं गलती हो गई है उसको सुधार सकते हैं
जी। अच्छा, हम आपको ये भी बता दें कि जनगणना अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ देश में लोगों की संख्या का पता चल सके इसलिए भी आयोजित की जाती है, तो देश के लोगों का जो सही रहन सहन है इससे पता चलता है, वो भी एक तौर है, आर्थिक स्थिति कैसी है लोगों की इसका भी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, तो सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है ताकि हमारा जो पूरा लाइफ स्टाइल है वो पता चल सके संख्या के अलावा, तो इसमें मुझे लगता है पूरा सहयोग देने की जरूरत है कि आप सटीक जानकारी मुहैया करवाएं। मृत्युंजय जी, हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि देशवासियों से अगर कोई अपील है तो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से करें।
फरहत जी, जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और जनगणना के आंकड़े इकट्ठा होते हैं, वो सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकारों की हो, उनकी नीतियां उन पे आधारित होती है
जी।
जो कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं अलग अलग कार्यक्रम, उनमें जनगणना के आंकड़ों का आधार होता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें पूरे मन से भाग लें और सही जानकारी दें जिससे कि सही आंकड़े प्राप्त हो सके, देश की सही तस्वीर प्राप्त हो सके और उसके आधार पर भविष्य की नीतियां अच्छी प्रकार से निर्धारित हो सके
जी। और दिल्ली से बलराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। बलराम जी
जी, मैम नमस्कार।
नमस्कार
जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर से कि जो जनगणना की शुरुआत है वो मतलब कब से हो रही है, ऑल ओवर इंडिया में मतलब एक साथ तो हो, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होगा, तो कौन से स्टेट का क्या होने वाला है।
जो प्रथम चरण है बलराम जी, उसमें 6 महीने की अवधि में राज्य को विकल्प दिया गया है कि 30 दिन की अवधि चयन करें और उसमें फील्ड का कार्य संपन्न करें। जो द्वितीय चरण है उसमें पूरे देश में एक साथ होता है, फरवरी 2027 में जो प्रस्तावित है
जी। और इसके अलावा मृत्युंजय जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि इस जनगणना की तैयारी के लिए प्रधान जनगणना अधिकारियों और जिला जनगणना अधिकारियों को एक प्रशिक्षण जो है वो मुहैया कराया गया था, तो किस तरह का वो प्रशिक्षण था ताकि वो अपने काम को सहज तरीके से कर सकें।
हाँ, प्रशिक्षण जनगणना में बहुत महत्वपूर्ण होता है
जी।
जैसे भारत एक विशाल देश है और पूरे देश में जनगणना की अवधारणाएं जो कॉन्सेप्ट है एक प्रकार से लोग समझें और उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण हो। तो प्रशिक्षण में एकरूपता के लिए उसके लिए टाइम टेबल, करिकुलम, क्या कंटेंट होगा, स्टैंडर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके माध्यम से सभी को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था है
जी। अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है पानीपत से। शैलेंद्र शेंद्रकर ने पूछा है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, क्या उसके साथ अभी जो रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा दोनों का कोई मेल किया जाएगा? यानी पुरानी जो 2011 की जनगणना है उसका क्या कोई कंपैरिजन है 2026 की?
फरहत जी, मैं बताना चाहूंगा कि व्यक्तिगत आंकड़ों का कोई मिलान नहीं होता है और अभी संभव भी नहीं है। यह नए सिरे से सारे आंकड़े लिए जाएंगे 2027 की जनगणना में
जी। अच्छा, एक और प्रश्न आया है सुहिता का तमिलनाडु से। फॉर हाउसिंग सेंसस, इफ अ पर्सन हैज अ लैंड विद नो कंस्ट्रक्शन ऑन दैट साइट, देन विल इट बी कंसिडर्ड एज एन एसेट?
नो, वी आर नॉट टेकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट, वी आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउस, हाउ, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द हाउस। सो इफ यू नो, वी आर नॉट टेकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंड।
और एक और प्रश्न इन्होंने पूछा है, व्हेन विल सेल्फ एनुमरेशन स्टार्ट एंड एंड?
Self enumeration, states have selected different period for self enumeration and they have notified in the gazette. So she will have to look for the gazette of that particular state.
अच्छा, जो डिजिटल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी काफी प्रश्न लोगों के आ रहे हैं कि इस तरीके से इसमें क्या फायदे होंगे?
डिजिटल में सबसे पहला फायदा तो यह है कि आंकड़े ज्यादा शुद्ध तरीके से संग्रहित होंगे
जी।
जो फिजिकल आंकड़े इकट्ठा करते हैं उनको डिजिटाइज करने में त्रुटियों की संभावना रहती है, और आंकड़ों का प्रकाशन, जो जनगणना के आंकड़े हैं उनका प्रकाशन शीघ्रता से संपन्न हो सकेगा
जी। अच्छा, गांव-गांव में अगर ये जनगणना जो है वो आयोजित की जा रही है तो वहां के परिदृश्य में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? यानी आर्थिक स्थिति जो है वो गाँव की सुधरेगी, मतलब किस तरह का परिणाम आएगा सामने?
फरहत जी, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और 16 साल बाद हो रही है। 16 साल में देश ने काफ़ी प्रगति की है, हर दिशा में प्रगति की है, तो निश्चित रूप से वो जनगणना में परिलक्षित भी होगा। लोगों का जीवन स्तर जो है ऊँच हुआ है, बढ़ा है, व्यक्तिगत आय बढ़ी है, उनका रहन सहन बेहतर हुआ है, तो वो सारे चीज़ें जनगणना में सामने परिलक्षित होगा
जी। अच्छा, ये भी एक और प्रश्न आया है कि क्या जनगणना हमेशा 10 वर्ष में ही कराई जाती है? एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये प्रश्न किया है।
हाँ फरहत जी, इसमें जो कानूनी स्थिति है, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 है, उसमें केंद्र सरकार जब उचित समझती है, जब आवश्यक समझती है, तब जनगणना कराती है
जी।
आम तौर पर परिपाटी के रूप में हर 10 वर्ष में यह होता रहा है। 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 के लिए भी अधिसूचना निर्गत की गई थी, जनगणना कराने की मंशा की अधिसूचना निर्गत हो गई थी, पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन उस वक्त जो कोविड की स्थिति थी उसकी वजह से उसको स्थगित करना पड़ गया था, और अब इस वक्त 2027 की जनगणना चल रही है
जी। और अभी अभी एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि हाउ टू गेट इनॉमिनेटेड इफ वन इज अ माइग्रेंट, वेदर देयर विल बी डुप्लीकेसी? आशुतोष प्रकाश ने ये सवाल पूछा है झारखंड से।
आशुतोष प्रकाश जी, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू कैन गेट योरसेल्फ इनुमरेटेड वेयर एवर यू आर एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन इनुमरेशन इज टेकिंग प्लेस, वेयर एवर यू आर स्टेइंग, इनुमरेटर विल गो एंड रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्सेज, एंड ऑल्सो यू कैन सेल्फ इनुमरेट योरसेल्फ। सो बेसिकली एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस दिस इज टू बी डन
जी। और अब वक्त हो चला है अनुमति लेने का भी, और बहुत सारे सवाल जो हैं इस पर हमारे पास आए, और इसको और समझने में जो है थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम जो है अपना आगे का जो कार्यक्रम है वो इस पर एक बार दोबारा लेकर आए मृत्युंजय जी के साथ, ताकि जो आपके जो सवाल हैं उसका सही तरीके से हम लोग और जवाब दे पाएं और आपको मुश्किल ना हो कोई भी जानकारी लेने में। और जनगणना, जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ देश में लोगों की संख्या पता चल सके इसके लिए नहीं होती, बल्कि आपके रहन सहन के लिए होती और आर्थिक स्थिति आपकी क्या है उसके लिए भी होती है। और बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि आज सुबह ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जनगणना 2027 में, और फिर आप हमारे पास स्टूडियो में मौजूद रहे, हमारे श्रोताओं का जो सवाल है उसके लिए जो है आपने जवाब दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया।
धन्यवाद फरहत जी।
और एक बार फिर से हम बता दें कि हमारी परिचर्चा में शामिल हुए थे भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण जी। अगले सोमवार हम फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो मुझे फरहत नास को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।